पहला राजा अध्याय चार। हम अध्याय चार में देखते हैं कि वहां सुलेमान के राज्य के प्रमुख राजकुमारों की और 12 अधिकारियों की सूची दी गई है। सुलेमान ने पूरे इसराइल में से चुनकर 12 अधिकारी नियुक्त किए थे, जो एक एक करके प्रति माह राजा के कुटुंब के लिए भोजन व्यवस्था करते थे। ऐसा लगता है कि ये कार्य सहज होगा, एक महीने काम करो और 11 महीने खाली बैठो। वास्तव में ऐसा नहीं था। वे यत्न करके 11 महीनों में वो समस्त सामग्री एकत्र करते थे जो एक महीने में राजा के कुटुंब की आवश्यकता थी। आगे पढ़ने पर पता चलेगा कि उसके घराने के लिए क्या क्या भोजन वस्तुएं आती थी। उसकी पत्नियों के साथ 1000 रखेल भी थी, साथ में उसके सेवक और अन्य जिनके लिए बहुत भोजन लगता था। अध्याय 4 पद 22 में सुलेमान के घराने में प्रतिदिन लगने वाले अनाज की मात्रा दी गई है और सुलेमान के एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कौर मैदा। एक कौर करीब 10 पैमाना होता है, अतः 300 पैमाना मैदा रोज लगता था। और अध्याय 4 पद 22 और 23, 60 कोर आटा लगभग 18,000 किलोग्राम, 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल। नौकरों और पत्नियों के लिए वास्तव में पत्नियां नौकरों से कुछ ही ऊपर होती थी, स्त्रियों का अधिक सम्मान नहीं था। 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल। चर्बी मुख्य भाग थी। चराई के बैलों को अनाज चारा खिलाया नहीं जाता था, इसलिए उनमें चर्बी कम होती थी। अध्याय 4 पद 23 में आगे लिखा है, और 100 भेड़ बकरी और इनको छोड़ हिरण, चिकारे, यकमूर और तैयार किए हुए पक्षी, टर्की और मुर्गियां आदि, उन्हें बहुत लोगों को खाना खिलाना पड़ता था। प्रत्येक स्त्री के अपने बच्चे भी थे। अध्याय 4 पद 24, महानद के इस पार के समस्त देश पर, अर्थात तिप्सा से लेकर अजा तक जितने राजा थे, उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों में मेल रखता था। वे स्थान जहां से वे भोजन वस्तु इकट्ठा करते थे, यदि आप इनके नामों को देखो, एप्रेम पहाड़ी से चलकर, अर्थात पूरे इसराइल राष्ट्र को सुलेमान के लिए खाद्य पदार्थ पहुंचाने होते थे, इसलिए एक अधिकारी हर भाग में रहता था, यर्दन के पार भी, गिलाद और मोआब में भी। ये लोग भी भोजन वस्तु भेजते थे। उसके पास 40,000 घोड़ों के लिए घुड़सान थी। ऐसा लगता है कि ये सब बड़े बोल हैं। सच तो ये है कि बहुत समय तक तो लोग सोचते रहे कि बाइबल बड़ा चढ़ाकर बोलती है। जब पुरातत्व वैज्ञानिकों ने सुलेमान के घोड़ों के घुड़सलों की खोज की, तो विभिन्न शहरों में सैकड़ों की संख्या में मिली थी, इसलिए अब ये अतिशयोक्ति नहीं रह गई है। अध्याय 4 पद 26 से 29 तक, फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 थान थे और उसके 12,000 सवार थे, और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए और जितने उसके मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी, और घोड़ों और वेग चलने वाले घोड़ों के लिए जौ और पुआल जहां प्रयोजन पड़ता था वहां आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुंचाया करता था। और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनके के तुल्य अनगिनत गुण दिए। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उसने अनेक नीति वचन लिखे थे। हमारे पास नीति वचन की पुस्तक भी है। कुछ नीति वचन बच्चों के अनुशासन के प्रति बोलते हैं। कोई शक नहीं, सुलेमान ने अपने पिता की गलतियों को देखा था। अब अदोनिया उसके एक पुत्र ने विद्रोह किया, जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा, और जहां पता चलता है कि दाऊद ने अदोनिया को कभी अनुशासित नहीं किया, उसने अदोनिया को समझाने के लिए कभी भी एक शब्द नहीं कहा। इसी अदोनिया ने बाद में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे प्रभावित होकर शायद सुलेमान ने नीति वचन में लिखा, नीति वचन 29:15, जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। या नीति वचन 22:15, लड़के के मन में मूर्ता बंधी रहती है, परंतु छड़ों की ताड़ना के द्वारा वो उसे दूर की जाती है। या जो लड़के पर छड़ी नहीं उठाता वो उसको बिगाड़ता है। छड़ी दूर रखो और पुत्र का नाश करो। मेरा पुत्र इसे परमेश्वर की आज्ञा समझता था, वो इसे समझ नहीं सका। उसने सोचा उसे नाश होना चाहिए। उसने कहा, परंतु बाइबल कहती है जो छड़ी नहीं उठाता वो लड़के को बर्बाद करता है। कैसी विचित्र बात है कि लोग अपनी सुविधा के लिए वचन को काम में लेते हैं।